दिन भर, तारीख 17 जुलाई दिन शुक्रवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। ग्रीस के लिए राहत भरा जर्मन संसद का पैगाम, जर्मनी ग्रीस से बात शुरू करेगा तीसरे बेल आउट पैकेज पर।
Abgegebene Stimmen 598, mit Ja haben gestimmt 400.
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के रिश्तेदारों की मुजफ्फरनगर की संपत्ति के मालिकाना हक पर छिड़ा विवाद। 18 जुलाई को जन्मदिन है नेल्सन मंडेला का, याद करेंगे उन्हें, क्यों उन्होंने तीन शादियां की।
My father was a polygamist. He had four wives. I didn't think it was a mistake to have a number of women.
सुनेंगे विवेचना, लेकिन पहले थोड़ा सा ठहरेंगे और सुनेंगे बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार सुशीला सिंह से। जर्मनी की संसद में ग्रीस के तीसरे बेलआउट पैकेज पर बातचीत शुरू करने पर सहमति हो गई है। इस मुद्दे पर जोरदार बहस के बाद दो तिहाई बहुमत से सांसदों ने इस बातचीत का समर्थन किया। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने माना कि सहमति पर पहुंचना मुश्किल था, लेकिन ग्रीस के समाधान के लिए यही विकल्प है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने सरकार और तालिबान के बीच बातचीत को सैद्धांतिक तौर पर स्वीकारने के लिए तालिबान के नेता मुल्ला उमर को शुक्रिया अदा किया है। ईद के मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए अशरफ गनी ने कहा कि मुल्ला उमर ने इस हफ्ते शांति का संदेश दिया है। साथ ही उनका कहना था कि तालिबान अन्य विद्रोही समूह से अलग है, क्योंकि वो इस बातचीत की प्रक्रिया में शामिल हो रहा है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी का कहना था, एक संदेश प्रमुख जो है वो जो राष्ट्र चाहता है, और वो संदेश है शांति और इस खून खराबे के खात्मे का। मैं तालिबान के नेता मुल्ला मोहम्मद उमर का उन वक्तव्य के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ जिसमें उन्होंने बातचीत को समाधान बताया है। हमारे लिए तालिबान का मुद्दा दूसरे मुद्दों से अलग है। वे बातचीत में शामिल होना चाहते हैं और अगर उन्हें कोई दिक्कत है तो उसे बातचीत के जरिए हल कर लिया जाएगा। ये थे अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के शब्द। अमेरिका के टेनेसी राज्य में नौसेना के दो केंद्रों पर हुए हमले की जांच कर रही एफबीआई का कहना है कि अभी तक इस हमले का अंतर्राष्ट्रीय चरमपंथी समूह से संबंध होने का पता नहीं चल पाया है। नौसेना के दो केंद्रों पर हुए इस हमले में चार मरीन की मौत हो गई थी। अधिकारियों के अनुसार एक हथियारबंद व्यक्ति ने यह हमला किया था और उसे मार दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इस हमले का मकसद स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस हमलावर का नाम मोहम्मद यूसुफ अब्दुल अजीज बताया गया है। सरकारी वकील इसे घरेलू चरमपंथ की कार्रवाई मानकर जांच कर रहे हैं। पेरिस में सरकारी वकील का कहना है कि फ्रांस में जिन तीन लोगों को हमले की योजना बनाने के संदेह में पकड़ा गया था उसमें से एक सीरिया में इस्लामिक स्टेट के निर्देश पर काम कर रहा था। ये तीन लोग फ्रांस के सैन्य इमारत पर हमला करने की योजना बना रहे थे। वकील का कहना था कि ये तीनों नौसेना में काम करने वाले किसी सदस्य के अपहरण कर उसके सिर कलम करने की तैयारी कर रहे थे। सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि जब ये स्पष्ट हो गया कि इन तीनों में से सबसे जवान सीरिया में चरमपंथियों के साथ शामिल नहीं हो सकेगा, तब उसे फ्रांस में हमले के आदेश दिए गए। जापान का कहना है कि वो साल 2020 के ओलंपिक खेलों के लिए नए राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने की योजना को ख़त्म करके उसे फिर नए सिरे से शुरू करेगा। इस परियोजना में पहले ही काफ़ी देरी हो चुकी है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिनभर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। लगता है ग्रीस अपने कर्ज संकट के हल के नजदीक पहुंचता जा रहा है। एक तरफ जहां यूरोपीय राहत कोष की मदद से सोमवार तक ग्रीस के बैंक काम करना शुरू कर देंगे, वहीं आज जर्मनी की संसद ने सरकार को इस बात की अनुमति दी कि ग्रीस को मदद करने वाले तीसरे बेल आउट पैकेज पर वो बातचीत शुरू कर दे। ग्रीस को इस संकट से उबारने की पूरी प्रक्रिया में जर्मनी का काफी बड़ा योगदान है। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार सुनिए प्रगति सक्सेना से।
जर्मन संसद में ग्रीस के तीसरे बेलआउट पैकेज पर बातचीत करने पर सहमति बन गई है। बुंडेस्टाग के अध्यक्ष नॉर्बर्ट लैमर्ट ने मतदान के नतीजे घोषित करते हुए कहा,
abgegebene Stimmen 598,
कुल 598 वोट पड़े जिनमें 439 इसके समर्थन में और 119 विरोध में थे। 40 सांसदों ने इस पर वोट नहीं किया, इसलिए इस प्रस्ताव को पारित किया जाता है।
इससे पहले जर्मन सांसदों में इस मुद्दे पर कभी तीखी तो कभी जोशीली बहस हुई कि ग्रीस के बेलआउट पैकेज पर बातचीत शुरू करनी चाहिए या नहीं। ग्रीस के राहत कार्यक्रम को लागू किए जाने में जर्मनी की अहम भूमिका है। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने सत्र की शुरुआत करते हुए कहा कि ग्रीस को आर्थिक संकट से उबारने की योजना सभी संबंधित देशों के लिए बहुत कठिन है, लेकिन उन्होंने सांसदों से अपील की कि वे इसका समर्थन करें।
Die Alternative zu dieser Einigung wäre nicht eine geordnete.
चांसलर मर्केल कह रही हैं, इस समझौते का विकल्प ग्रीस का यूरो से बाहर निकलना नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ग्रीस ये चाहता था। ये समझौता लागू नहीं हुआ तो वहाँ अराजकता हो जाएगी। लेकिन चांसलर मर्केल की ही पार्टी क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स के कुछ सांसदों ने धमकी दी कि वे ग्रीस के बेलआउट पैकेज के खिलाफ वोट करेंगे। डी लिंक के पार्टी के प्रमुख ग्रेगोर गीजी ने चांसलर मर्केल और उनके वित्त मंत्री वोल्फगांग शोएबल की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार ग्रीस की तरफ बहुत सख्त रवैया अख्तियार कर रही है, जिससे पूरे यूरोपियन कार्यक्रम को नुकसान हो रहा है।
श्रीमती चांसलर, आप ठीक कह रही हैं। आज हम सिर्फ ग्रीस के बारे में बात नहीं कर रहे, बल्कि जर्मनी और यूरोप की भी बात कर रहे हैं। मुझे दुख है कि श्री शोएबल यूरोप की अवधारणा को नष्ट करने की प्रक्रिया में हैं और चांसलर मर्केल और श्री गैब्रियल भी उनका साथ दे रहे हैं। आप तीनों अपने राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं।
ग्रेगोर गीजी के शब्द। इन तीखे वक्तव्यों और विरोधों के बावजूद जर्मन संसद का ये बेहद तनावपूर्ण सत्र अंततः ग्रीस के लिए राहत का संदेश लेकर आया है।
तो अब जर्मनी ग्रीस से बात शुरू करेगा तीसरे बेलआउट पैकेज पर। मैंने ग्रीस की राजधानी एथेंस फोन कर वहां पर मौजूद स्थानीय पत्रकार इरफान तैमूर से संपर्क साधा और पूछा, जर्मन की संसद से ये जो प्रस्ताव पारित हुआ है तो इससे ग्रीस को संकट से निकलने के लिए माहौल क्या बेहतर हुआ है?
जी, आपको मैं जानकारी देती हूँ, ये बताना जरूर समझूंगा कि सिर्फ ग्रीस की ही पार्लियामेंट से इसको रिकमेंड करना जरूरी था। ये यूरोप जोन के जो 18 मेंबर ममालक हैं उनकी पार्लियामेंट से भी मेंबरों को वहां से भी जो पास करवाना जरूरी था। तो फ्रांस की तरफ से हो जाए, जर्मन की तरफ से हो जाए, मगर आवाम में बहुत ज्यादा बेचैनी और बहुत ज्यादा परेशानी के आलम में है, इसलिए कि हर चीज अब बहुत कॉस्टली हो जाएगी। ये चीज अभी एक रुपये एक यूरो की थी, वो अब एक यूरो और 15 सेंट से 20 सेंट तक चली जाएगी। और जो महंगाई होने से जो इनकी पेंशन रिफॉर्म्स हैं, कटौती है इनकी जो तनख्वाहों में है, इसमें मुश्किल पड़ेगी और लोग अभी देख रहे हैं कि क्या है। और दूसरी चीज जो गवर्नमेंट को सबसे बड़ा झटका लगा, यहाँ के प्रधानमंत्री अलेक्सिस सिप्रस हैं, इनकी अपने जो मेम्बर्स पार्लियामेंटेरियन हैं इन्होंने इस बिल को प्रस्ताव करने के मुकाबले वोट दिया। अभी यहाँ पर एक नई बैठक शुरू हो चुकी है विमान में, कि वो ये है कि अभी ये गवर्नमेंट चलेगी भी कि नहीं चलेगी।
ग्रीस का हाल बता रहे थे वहां पर मौजूद स्थानीय पत्रकार इरफान तैमूर।
बीबीसी इंडिया बोल।
आईपीएल में फिक्सिंग और सट्टेबाजी को लेकर जस्टिस लोढ़ा समिति के फैसले ने एक पिटारा खोल दिया है। आईपीएल की दो टीमों पर पाबंदी लगी है, साथ ही मैयप्पन और राज कुंद्रा के क्रिकेट से जुड़े रहने पर आजीवन रोक लगा दी गई है। क्या समिति का ये फैसला आईपीएल में भ्रष्टाचार को कम कर पाएगा या फटाफट क्रिकेट के दौर में इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं दिखता? शनिवार बीबीसी इंडिया बोल में चर्चा होगी इसी विषय पर। मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1802-7001 पर शाम 7:30 बजे।
बीबीसी इंडिया बोल।
कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि उनकी 56 इंच की छाती को वो 6 महीने में 5.6 इंच में बदल देंगे। राहुल आज जयपुर में थे और पार्टी कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे। भाषण में उन्होंने मोदी से लेकर ललित मोदी पर काफी चुटकियां ली और कहा कि राजस्थान में ललित मोदी सरकार है। जयपुर से आभा शर्मा की रिपोर्ट।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अपने 2 दिन के राजस्थान दौरे के तहत आज जयपुर पहुंचे। यह इत्तेफाक की ही बात थी कि यह कार्यक्रम वहीं हुआ जहां 2 साल पहले उन्होंने चिंतन शिविर के मौके पर उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली थी और उन्होंने अपना बहुचर्चित भावुक भाषण दिया था कि सत्ता जहर है। मगर आज राहुल का अंदाज एकदम बदला हुआ था, काफ़ी व्यवहारिक और चुटीला। उन्होंने भूमि अधिग्रहण मुद्दे पर प्रधानमंत्री को घेरते हुए उनकी 56 इंच की छाती को भी चुनौती दे डाली।
एक इंच जमीन नहीं जाएगी, 56 इंच की छाती 5.6 इंच छाती हो जाएगी 6 महीने में। 5.6 इंच कौन करेगा? कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का मजदूर, देख लेना।
राहुल ने आगे कहा कि राज्य की भाजपा सरकार वसुंधरा राजे की नहीं बल्कि ललित मोदी की सरकार है। अपने भाषण को और रोचक बनाते हुए उन्होंने फिल्म लगान का भी जिक्र किया और कहा कि 100 साल पहले भी रिमोट कंट्रोल लंदन में हुआ करता था और अब भी वैसा ही है।
और वो किसान लड़ गए और जिन्होंने वो पिक्चर देखी है उनको मालूम है कि अंत में किसान जीत गए। और सिर्फ उस पिक्चर में नहीं जीते, किसानों ने, मजदूरों ने सच्चाई में अंग्रेजों को यहां से बाहर कर दिया। अब 100 साल हो गए और जैसे सरकार का रिमोट कंट्रोल लंदन में था, वैसे ही आज भी सरकार का रिमोट कंट्रोल लंदन में बैठा हुआ है।
कार्यक्रम चूंकि प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं का था, राहुल ने पार्टी से जुड़े मुद्दों पर भी बेबाकी से अपनी राय रखी और खूब तालियां बजी। उन्होंने तरुण गोगोई और अशोक गहलोत जैसे अनुभवी नेताओं का नाम लेते हुए कहा,
यहाँ पे सिर्फ एक नियम चलेगा, जो दिल का जवान है, गहलोत के दिल का जवान है।
भाषण के दौरान बहुत सी बार राहुल गांधी जिंदाबाद और तालियों की गड़गड़ाहट ने खुद ही बता दिया कि राहुल की बात कार्यकर्ताओं के दिल तक सीधे पहुंच गई। जयपुर से आभा शर्मा।
पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे, जहां उनका परिवार काफी संपत्ति का मालिक हुआ करता था। मगर इन दिनों उनके रिश्तेदारों और मुजफ्फरनगर के स्थानीय प्रशासन के बीच संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर विवाद है। मामला क्या है, सलमान रावी से सुनते हैं।
वर्ष 1926 से लेकर 1940 तक पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान मुजफ्फरनगर से प्रांतीय विधान परिषद के सदस्य रह चुके थे। उनका परिवार काफी संपन्न था और इसीलिए उनके पास काफी संपत्ति थी। उनके पिता रुस्तम अली खान तीन भाई थे और बंटवारे के बाद जब लियाकत अली खान पाकिस्तान चले गए तो उनके चचेरे भाइयों के कब्जे में उनकी पुश्तैनी संपत्ति आ गई। बंटवारे के बाद कस्बे के कंपनी बाग के पास स्थित उनका बंगला नीलाम हुआ। अब कुछ लोगों ने लियाकत के परिवार की संपत्ति का खुद को वारिस बताते हुए उस पर अपने मालिकाना हक का दावा ठोका है। उनके दावे के हिसाब से लगभग आधा मुजफ्फरनगर उनका हो जाएगा। जिन संपत्तियों पर वो दावा पेश कर रहे हैं उनमें जिले के कलेक्टर का बंगला सहित रेलवे का प्लेटफॉर्म भी शामिल है। मगर मुजफ्फरनगर के जिला प्रशासन ने इस दावे को धोखाधड़ी की संज्ञा देते हुए 7 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। जिला मजिस्ट्रेट निखिल चंद्र शुक्ला ने BBC से बात करते हुए कहा कि जिस संपत्ति पर दावा किया जा रहा है वो दरअसल सरकारी है और दावा करने वालों के पास इसके मालिकाना हक के पुख्ता सबूत भी नहीं है।
रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये सब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है जी। और गवर्नमेंट के कब्जे में है। कुछ लोगों ने अपना एक पार्टनरशिप डीड बना के अपना और कुछ अपने नए फर्म्स में लोगों को इंडक्ट करते हुए शेयर बेच के डीड एग्जीक्यूट किया है और एक क्लेम कर रहे हैं कोर्ट में ये हमारा है। तो वो मतलब एक तरीके से फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट है।
अच्छा।
तो वो कोर्ट में जब उन्होंने किया तो उसमें जब पूरी जांच कराएगी तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट के कब्जे में है, तो इसलिए FIR दर्ज की गई है।
मुजफ्फरनगर के जिला मजिस्ट्रेट का कहना है कि दावा करने वालों ने तो लोक निर्माण विभाग तक की सड़कों पर अपना हक जता दिया है।
पूरी शहर की प्रॉपर्टी है, DM रेजिडेंस भी है उसमें और रेलवे प्लेटफॉर्म, कंपनी बाग, सेंट्रल स्कूल, ओल्ड प्लानिंग ऑफिस, PWD रोड्स वगैरह सब ये है। उसमें उनका कोई राइट बनता नहीं है, वो तो पता नहीं किसी ने मतलब उसका क्या इसका मोटिव है ये नहीं क्लियर है। तो इसलिए FIR दर्ज की कि पब्लिक प्रॉपर्टी है और लोक संपत्ति निवारण अधिनियम में और IPC में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
प्रशासन के अनुसार कुछ लोगों ने वर्ष 2003 में आपस में मिलकर एक डीड बनाई जिसमें उन्होंने खुद को लियाकत अली खान का रिश्तेदार बताया। बाद में उन्होंने उत्तर प्रदेश के राजस्व आयोग के समक्ष अपना दावा भी पेश कर दिया। इसी दौरान कुछ लोगों ने मिलकर एक निर्माण कंपनी की भी स्थापना की। इस कंपनी में वो लोग शामिल हैं जो लियाकत अली खान के चचेरे भाइयों के वंशज हैं। कंपनी में परिवार के बाहर के लोग भी हैं जो उनके साझेदार हैं। इन्हीं में से एक हैं पंकज मित्तल, जिन्होंने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन की कार्रवाई एकतरफा है।
सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मैलाफाइड वो है। इन्होंने अभी से लियाकत अली खान से जोड़ दिया, लियाकत अली खान से इसका कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे मुजफ्फरनगर के अंदर तीन जमींदार हुए बहुत बड़े बड़े, एक उमर दराज अली खान, एक रुस्तम अली खान जी और एक हुए अजमत अली खान। अधिकतर प्रॉपर्टियों में ये तीन को शेयरर्स थे, आपस में तीनों भाई थे ये। और हम तो करवाना चाह रहे हैं कि इसे ये जो क्रिस्टल क्लियर कहानी है, ये क्रिस्टल क्लियर हो। इनके पास जैसे रुस्तम अली की जायदाद है, कस्टोडियन में गई हुई है, आज तक इन्हें कोई ये बताने वाला नहीं है कि रुस्तम अली की जायदाद तुम्हारे नाम कैसे चढ़ेगी। रेवेन्यू रिकॉर्ड में सारे पे एजाज अली का नाम चढ़ा हुआ आज भी। मैं कह रहा हूँ अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम नहीं होगा तो हम शहर छोड़ देंगे।
ये दूसरा मामला है जब किसी जमींदार की संपत्ति को लेकर इतना बड़ा विवाद खड़ा हुआ हो। इससे पहले महमूदाबाद के तत्कालीन राजा की संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर इसी तरह का विवाद चला। ये जमीन सरकारी कब्जे में थी, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन राजा के वंशजों के हक में फैसला दिया। सलमान रावी, बीबीसी दिल्ली।
ये थी सलमान रावी की रिपोर्ट, आप सुनी चुके हैं। 18 जुलाई यानी कि कल दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय नेल्सन मंडेला का जन्मदिन है। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मंडेला के काम और रंगभेद के खिलाफ उनके संघर्ष को पूरी दुनिया जानती है, लेकिन उनकी निजी जीवन के बारे में लोगों की जानकारी कम है। आज की विवेचना में सुनिए कि किस तरह से और कौन कौन सी महिलाएं मंडेला के जीवन में आईं। नेल्सन मंडेला के आकर्षक व्यक्तित्व और चटकीले पहनावे के कारण उनके पास महिला प्रशंसकों की कोई कमी नहीं थी। उनकी जीवनी लिखने वाले एंथोनी सैमसन ने एक बार कहा था, वो महिलाओं के चहेते पुरुष हैं और उन्हें इस बात का गर्व रहा है। मंडेला की तीन पत्नियां थीं और 6 दशक से अधिक समय तक उनके जीवन के अलग अलग हिस्सों में इन महिलाओं का बेहद खास योगदान रहा।
My father was a polygamist. He had 4 wives and I regarded all of them.
मेरे पिता बहुपत्नी प्रथा में विश्वास रखते थे। उनकी 4 पत्नियां थीं। मैंने सभी को अपनी माँ की तरह ही इज्जत दी और उनके बच्चों को भी अपने भाई बहनों की तरह ही माना। सच्चाई तो ये है कि जब मैं युवा था तो मुझे नहीं लगता कि कई महिलाओं से संबंध रखना कोई गलती थी। मैं अपने पिता के नक्शे कदम पर चला
था।
एक जीवन साथी के रूप में इन महिलाओं के साथ ने नेल्सन मंडेला को एक खास पहचान दी। उनकी पहली पत्नी थी एवेलिन मेस। मंडेला की पहली शादी 1944 में उनके राजनीतिक संरक्षक वाल्टर सिसलू की भतीजी के साथ हुई। इस समय तक उन्हें जोहान्सबर्ग आए हुए 3 साल बीत चुके थे और शादी के लिए तैयार होने की सबसे बड़ी वजह थी कि वो परिवार के जरिए खोजी गई गांव की लड़की से शादी को टालना चाहते थे। शादी के वक्त मंडेला की उम्र थी 26 साल जबकि एवेलिन सिर्फ 22 साल की थी। 1990 में मंडेला की रिहाई के बाद प्रकाशित उनकी जीवनी हायर देन होप में एवेलिन बताती है,
मुझे लगता है कि मैं पहली नजर में ही उनसे प्यार कर बैठी थी। पहली मुलाकात में ही हमारे बीच भरोसा कायम हो गया और 1 महीने के भीतर ही उन्होंने शादी की पेशकश कर दी।
13 साल तक मंडेला और एवेलिन विवाह बंधन में बंधे रहे। पेशे से एवेलिन नर्स थी, उस समय घर उनकी कमाई से ही चलता था। मंडेला अपनी कानून की पढ़ाई कर रहे थे। मंडेला और एवेलिन के 4 बच्चे हुए। दूसरे बच्चे की 9 महीने की उम्र में हुई मौत उनके जीवन का दुखद क्षण था। इसके बाद एवेलिन धार्मिक होती गई जबकि मंडेला अधिक राजनीतिक। इस शादी का दुखद अंत हुआ। देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद जमानत पर रिहा होकर मंडेला घर आए, लेकिन एवेलिन वहां से जा चुकी थी। मंडेला को साल 1964 में आजीवन कारावास की सजा हुई। नेल्सन जब 1990 में रिहा हुए तो लोगों ने इस घटना की ईसा मसीह की वापसी से तुलना की। इस तुलना पर एवेलिन ने एक पत्रकार से कहा था,
ये एकदम बेतुका है जब लोग नेल्सन के बारे में ऐसी बातें करते हैं। उस व्यक्ति की तुलना आप ईसा मसीह से कैसे कर सकते हैं जिसने अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया हो। दुनिया नेल्सन का बहुत अधिक महिमा मंडन कर रही है, वो सिर्फ एक इंसान है।
हालांकि बाद में उन्होंने मंडेला की काफी तारीफ की। आम चुनाव में जीत के बाद जब मंडेला देश के पहले काले राष्ट्रपति बने तो एवेलिन ने कहा, जेल से रिहा होने के बाद वो उनसे नहीं मिली, लेकिन वो जानती है कि लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं। मंडेला से अलगाव के 40 साल बाद एवेलिन ने 1998 में साइमन राकी पिले नाम के एक धार्मिक व्यक्ति से दूसरी शादी कर ली। एवेलिन मंडेला के जीवन से जा चुकी थी, लेकिन विनी माडिकेजला के साथ उनका प्यार उस वक्त परवान चढ़ रहा था जब वो देशद्रोह के मुकदमे का सामना कर रहे थे। विनी भी उस वक्त 22 साल की थी, मंडेला से 22 साल छोटी। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में विनी के राजनीतिक तेवर काफी गर्म थे। मंडेला ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, मैं उसके प्यार में भी पड़ रहा था और उसे राजनीतिक भी बना रहा था। लेकिन विनी के मुताबिक मंडेला ने कभी भी औपचारिक रूप से उनसे प्रणय निवेदन नहीं किया।
एक दिन नेल्सन ने सड़क पर चलते हुए कहा कि तुम उस ड्रेस डिजाइनर महिला को जानती हो, तुम्हें उसे जरूर मिलना चाहिए, वो तुम्हारे लिए शादी का पहनावा तैयार करने जा रही है, तुम अपनी तरफ से कितने लोगों को आमंत्रित करना चाहोगी? मुझे इस तरह से बताया गया कि मेरी उनसे शादी होने जा रही है। मैंने गुस्सा नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना पूछा कि कब।
साल 1983 में फिल्म निर्माता केविन हैरिस को दिए गए एक साक्षात्कार में विनी मंडेला ने कहा कि वो न सिर्फ एक कैदी के साथ शादी करने जा रही थी बल्कि उन पर प्रतिबंध भी लगा था और प्रिटोरिया में उनके मुकदमे की सुनवाई चल रही थी। ऐसे में उन्हें शादी करने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ी। उन्हें 4 दिन का वक्त दिया गया ताकि वो ट्रांस केई जाकर शादी कर सके। 1986 में नेल्सन जब जेल में थे, बीबीसी संवाददाता सूमो ग्रेगर दक्षिण अफ्रीका गई और उन्होंने विनी मंडेला से लंबी बातचीत की। उन्होंने विनी से मंडेला से पहली मुलाकात के बारे में पूछा।
I met him physically in 1957. Through my friend who is married to my brother.
मैं प्रत्यक्ष रूप से उनसे 1957 में मिली, अपने एक मित्र के जरिए जिसकी मेरे भाई से शादी हुई थी। उनसे मेरी मुलाकात एक गली में हुई। मैंने उस आदमी को बड़े गौर से देखा क्योंकि हमने उनके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। मुझे लगा कि मेरे दोस्त ने मुझे उनसे मिलवा कर एक गैर जरूरी काम किया है। बाद में मेरा इरादा बदल गया और अंततः मैं मंडेला के घर में उनकी पत्नी बनके दाखिल हुई।
विनी मंडेला से नेल्सन मंडेला की शादी 1958 में हुई। शादी के 3 साल बाद मंडेला भूमिगत हो गए, लेकिन जल्द ही उन्हें पकड़ लिया गया और 1962 में उन्हें 5 साल के लिए जेल भेज दिया गया। मंडेला पर देशद्रोह का मुकदमा चला। साल जेल में बिताने के बाद 1990 में जब मंडेला की रिहाई हुई और उन्होंने खुली हवा में सांस ली तो उस वक्त विनी मंडेला का वो हाथ थामे हुए थे। पूरी दुनिया में इस घटना का सीधा प्रसारण हो रहा था।
There's Mr. Mandela, Mr. Nelson Mandela, a free man, Mrs. Winnie Mandela next to him, hand in hand, taking his first steps into a new South Africa.
1980 के दशक के अंतिम दौर में विनी मंडेला की विवादित राजनीति और एक लड़के के अपहरण में उनकी भागीदारी की खबर के बाद वो विवादों में घिर गईं। 1991 में विनी मंडेला पर 1988 में एक स्कूली छात्र की हत्या का मुकदमा चला। इस पूरे मुकदमे के दौरान नेल्सन मंडेला अपनी पत्नी के साथ खड़े रहे, लेकिन विनी के बरी होते ही दोनों ने अलग होने का निर्णय कर लिया। राजनीतिक और व्यक्तिगत मतभेदों के बढ़ने के कारण मंडेला के राष्ट्रपति बनने से पहले ही दोनों अलग हो गए। इसके बाद मंडेला को जीवन में प्यार मिला तीसरी पत्नी ग्रासा मशेल से। ग्रासा नेल्सन मंडेला से 27 साल छोटी थी। मंडेला ने अपने 80वें जन्मदिवस के मौके पर 1998 में उनसे शादी रचाई थी। जिस समय मंडेला ने ग्रासा से शादी रचाई, उस समय राष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यकाल का ये आखिरी दौर था। ग्रासा माशेल मोजाम्बिक के पूर्व राष्ट्रपति समोरा माशेल की विधवा थी। समोरा माशेल की मौत 1986 में एक विमान दुर्घटना में हो चुकी थी। इस तरह से ग्रासा माशेल दो देशों की फर्स्ट लेडी यानी कि पहली महिला बन गई। ग्रासा माशेल ने बीबीसी को दिए गए साक्षात्कार में कहा था,
हमारी मुलाकात इस तरह हुई जैसे दो आत्माओं का मिलन होता है। हम दोनों को जल्द ही जीवन में बहुत कुछ खो देने का एहसास हुआ, इसलिए बिना किसी महत्वाकांक्षा के हम एक दूसरे के पास आ गए।
मंडेला सुबह जल्दी उठते थे, उनके सोने का समय भी तय था। इस कारण ग्रासा माशेल को शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हुई। ग्रासा माशेल के पहले से ही 6 सौतेले बच्चे थे और 2 उनके अपने बच्चे थे। बावजूद इसके वो अपने बड़े परिवार में मिलजुल कर रह रहे थे। मंडेला के बारे में ग्रासा माशेल कहती थी,
कई बार उन्हें बूढ़े होते हुए देखना काफी कष्टदायी होता था, लेकिन सभी जानते थे कि इसे रोका नहीं जा सकता। ये चमक, ये भावना किसी तरह धूमिल पड़ रही है।
2002 में बीबीसी के डेविड डिम्बलेबी ने मंडेला के साथ कई साक्षात्कार किए। इसमें उनसे उनकी पत्नियों के बारे में पूछा गया।
जेल के दौरान आपकी पत्नी विनी ने काफी संघर्ष किया और उन्हें उसके लिए सजा भी मिली। उनके योगदान के बारे में कुछ बताइए।
इसमें कोई संदेह नहीं है कि उस महिला ने इस संघर्ष में अत्यधिक योगदान किया। एक समय तो ऐसा था जब देश में वो संगठन की धुरी बन गई थी। उनके योगदान को कोई भी नकार नहीं सकता है।
अपनी 80वीं सालगिरह पर आपने मोजाम्बिक के पूर्व राष्ट्रपति की विधवा माशेल से शादी की। आप दोनों के बीच आकर्षण की क्या वजह थी?
इन सवालों पर चर्चा के लिए आप काफी युवा हैं। इन संबंधों की चर्चा मैं अपनी उम्र के लोगों के साथ ही कर सकता हूँ। वो एक अद्भुत महिला थी और एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने से पहले हमारी दोस्ती थी। मैं उनके गुणों का प्रशंसक रहा हूँ और आज भी हूँ।
लेकिन इन तीन पत्नियों के अलावा भी मंडेला के जीवन में एक और महिला आई। वो थी भारतीय मूल की अमीना कचालिया। बहुत कम लोगों को पता है कि विनी मंडेला से तलाक के बाद नेल्सन मंडेला ने अमीना कचालिया के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। अमीना कचालिया ने इसका जिक्र अपनी आत्मकथा व्हेन होप एंड हिस्ट्री राइम में किया है, जो उनके देहांत के बाद फरवरी 2013 में प्रकाशित हुई। इस बात की पुष्टि उनके बेटे गालिब कचालिया ने बीबीसी से बातचीत में की थी। वरिष्ठ पत्रकार सईद नकवी बताते हैं अमीना कचालिया और मंडेला के बारे में।
अमीना जो थी किसी जमाने में बहुत ही खूबसूरत, मनचली, चंचल, गजगामनी वाली चाल, उनके अंदर हर वो चीज थी जो कि एक खूबसूरत औरत हमारे बिहारी की कविता में जो दिखाई देती है। मंडेला की दोस्त भी थी, कॉमरेड भी थी, और यूसुफ भाई जो उनके शौहर थे वो बड़े हैंडसम, टॉल और बहुत खूबसूरत आदमी थे। जब हम 1994 में गए मंडेला से इनकी मुलाकातें तो हमारे सामने होती रही। यूसुफ भाई का इंतकाल हो चुका था। अमीना हमको लेके गई इनके बंगले में मंडेला के। हम और अमीना, और अमीना के इन्होंने हाथ पकड़ा और फिर ऐसी दोनों बातें करने लगे अपने पुराने मुआशकों की, मुझे जरा सी शर्म सी लगी। तो उस वक्त मुझे ये अंदाजा हुआ कि इन दोनों के ताल्लुकात में एक इंटीमेट पहलू भी है जो कि और दुनिया नहीं जानती। और फिर थोड़ी देर के बाद मंडेला का हाथ पकड़े पकड़े ये मंडेला इनको लेके अंदर चले गए और हम लोगों ने अपना सामान अमान पैक किया। अमीरा बाहर निकल गया कि आओ मिलो। मैंने कहा आप जाइए और हम लोग अब जा रहे हैं, आपसे शाम को मिलेंगे। तो उनका कि शाम को मैं वहां नहीं आऊंगी क्योंकि मैं यही रहूंगी अभी। तो दो तीन इस किस्म के टेलटेल मोमेंट्स मिले मुझे जिससे मुझे ये लगा कि साहब ये मामला ये कुछ पैंग बढ़ गया।
मंडेला के जीवन में कई महिलाएं आईं और गईं। महिलाओं के बीच मंडेला सदैव लोकप्रिय बने रहे। ये तो मंडेला के जीवन की निजी बातें थी, लेकिन सार्वजनिक जीवन और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनकी प्रतिष्ठा ऐसे सेनानी की है जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद के धब्बे को हमेशा के लिए मिटा दिया। मंडेला पर इस विवेचना का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे कल विश्व भारती में। और अब इससे पहले कि हम आपसे कार्यक्रम में विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
बीबीसी समाचार। जर्मनी की संसद में ग्रीस के तीसरे बेलआउट पैकेज पर बातचीत शुरू करने पर सहमति हो गई है। इस मुद्दे पर जोरदार बहस के बाद दो तिहाई बहुमत से सांसदों ने इस बातचीत का समर्थन किया। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने सरकार और तालिबान के बीच बातचीत को सैद्धांतिक तौर पर स्वीकारने के लिए तालिबान के नेता मुल्ला उमर को शुक्रिया अदा किया है। अमेरिका के टेनेसी राज्य में नौसेना के दो केंद्रों पर हुए हमले की जांच कर रही एफबीआई का कहना है कि अभी तक इस हमले का अंतर्राष्ट्रीय चरमपंथी समूह से संबंध होने का पता नहीं चल पाया है। पेरिस में सरकारी वकील का कहना है कि फ्रांस में जिन तीन लोगों को हमले की योजना बनाने के संदेह में पकड़ा गया था उनमें से एक सीरिया में इस्लामिक स्टेट के निर्देश पर काम कर रहा था। जापान का कहना है कि वे वर्ष 2020 के ओलंपिक खेलों के लिए नए राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने की योजना को खत्म करके उसे फिर नए सिरे से शुरू करेगा। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे हेमंत कुशवाहा। अब आपसे मुलाकात होगी डेढ़ घंटे बाद, यानी कि भारतीय समय के मुताबिक 9:30 बजे कार्यक्रम घटना चक्र में। तब तक मोहनलाल शर्मा को विदा दें, नमस्कार।